बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। ईमेल एड्रेस है andaaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़े जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है इस्लामी बेदारी और आले सऊद। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहाँ। नाज़रीन, खित्ते में तहरीक इस्लामी बेदारी के नतीजे में शुमाली अफ्रीका और मशरक़ वस्ती के बहुत से ममालिक तब्दीली और उथल पुथल से दो चार हुए। कुछ मुल्कों में मगरिब नवाज आमरियतें ख़त्म हो गईं और कुछ अभी अपने इबरत अंगेज़ अंजाम की मुंतज़िर हैं। इन्हीं मुल्कों में से एक सऊदी अरब भी है, जिसने त्यूनिस के आमिर बिन अली को पनाह दी। इसके बाद यमन के डिक्टेटर अब्दुल्ला साले को बचाने में बुनियादी किरदार अदा किया। मिस्र के आमिर हुस्नी मुबारक को भी आखिरी वक्त तक बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ रहा। बहरीन की आले खलीफा हुकूमत को बचाने और अवामी तहरीक की सरकूबी के लिए अपने फौजी बहरीन भेजे, लेकिन आले सऊद के ख़िलाफ़ ख़ुद सऊदी अरब के अंदर तहरीकें शुरू हुई। तहरीक का आगाज़ मशरक़ी इलाकों से हुआ, जहाँ आले सऊद ने इंतहाई तशद्दुद से काम लिया। बहुत से लोग मशरक़ी इलाकों में शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं और हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार करके जेलों में बंद किया जा चुका है। लेकिन न सिर्फ ये कि अवामी मुजाहरों का सिलसिला बंद नहीं हुआ, बल्कि सऊदी अरब के दीगर इलाके, हत्ता खुद रियाज, जद्दा, अलबुरैदा और मक्का मुकर्रमा, नीज़ मदीने मुनव्वरा में भी तमाम तर सख्तियों के बावजूद अवाम ने इम्तियाजी रवैये के खात्मे, ज़रूरी सियासी असलाहत और अपने बुनियादी हकूक़ के हसूल के लिए मुजाहरे किए। इस दरमियान आले सऊद ने अवाम की सरकूबी और अवामी रहनुमाओं की गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी रखा। चुनांचे उसने 8 माह कबल सऊदी अरब के मारूफ शिया आलिम दीन आयतुल्लाह शेख बाकिर निम्र अन निम्र को ज़ख्मी करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी पर सऊदी अरब में मुजाहरों में शिद्दत और वसत आ गई और अब आले सऊद ने उन पर मुकदमे का आगाज़ किया है और सरकारी वकील ने उनके लिए सजाए मौत का मुतालबा किया है। आयतुल्लाह शेख बाकिर निम्र पर नुमाइशी अदालत में मुकदमे के आगाज़ के साथ ही सऊदी अरब के मशरक़ी इलाकों में एक बार फिर अवाम के एहतजाजी मुजाहरों में शिद्दत आ गई है। आज के प्रोग्राम में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि सऊदी अरब में इस्लामी बेदारी की तहरीक इस वक्त किस मरहले से गुजर रही है। आले सऊद की हुकूमत, जो शाम में हुकूमत को अवाम मुखालिफ करार दे के दमिश्क के मुखालिफ ग्रोहों की माली और असलाह जाती मदद कर रही है और ताकत के जरिए बशार असद की हुकूमत का तख्ता उलटने की बात करती है, उसने खुद अपने अवाम के मुतालिबात पर कितनी तवज्जो दी है। अवामी रहनुमाओं और शिया उलमाए किराम के साथ तशद्दुद से क्या फ़ायदा हासिल कर सकती है? क्या आयतुल्लाह शेख बाकिर निम्र जैसी हस्तियों को जेल में बंद करके और उन पर नुमाइशी अदालत में मुकदमा चला के और खुदा नखास्ता मौत की सज़ा सुना के खुद को इस्लामी बेदारी की तहरीक से महफूज रख सकती है? मगरबी ताकतें, जो जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के दिफा की दावेदार हैं, सऊदी अरब में अवाम की सरकूबी, इंसानी हकूक़ की पामाली और अवामी शख्सियात नीज़ रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर क्यों खामोश हैं? इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने इस्लामाबाद स्टूडियो में आने की दावत दी है पाकिस्तान के मुमताज़ तजिया निगार अजहर आब्दी साहब को। हमारे दिल्ली स्टूडियो से इस मुजाकरे में हिस्सा लेंगे हिंदुस्तान के मुमताज़ और सीनियर तजिया निगार कमर आगा साहब, और टेलीफोन लाइन के जरिए इस मुबाहसे में शामिल किया जाएगा पाकिस्तान के एक सीनियर तजिया निगार डॉक्टर कैसर खान को। लेकिन पहले इस ताल्लुक से हमारी रिपोर्ट मुलाहजा फरमाएं।
सऊदी अरब में मुजाहरों का सिलसिला शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है और इसका दायरा भी मुसलसल बढ़ रहा है। सऊदी अरब के मशरकी सूबे के अवाम ने मुजाहरे करके सरकर्दा शिया आलिम दीन शेख نمر باقن ان نمر کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ صوبہ قطیف کے عوام کی بہت بڑی تعداد نے حکومت کی جانب سے مظاہروں پر پابندی کے باوجود عوامیہ سمیت کئی شہروں کی سڑکوں پر مارچ کیا اور حکومت کے پرتشدد اقدامات کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین سرکردہ شیعہ عالم دین آیت اللہ نمر باقر نمر کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے، جن پر ملک کی ایک نمائشی عدالت میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ ان پر دہشت گردی میں تعاون اور ملک میں بد امنی پھیلانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے پروسیکیوٹر نے ملک کی نمائشی عدالت سے شیخ نمر باقر النمر کو موت کی سزا دینے کی اپیل کی ہے، جس کے بعد مذکورہ عالم دین کے جوڈیشل قتل کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کی شاہی حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے 8 جولائی 2012 کو مشرقی صوبے قطیف میں آیت اللہ شیخ نمر باقر النمر پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اور انہیں گرفتار کر کے لے گئے تھے۔ سعودی عرب کے سیاسی کارکنوں کا کہنا ہے کہ حکومت آیت اللہ نمر باقر النمر کو جیل میں قتل کرنا چاہتی تھی، لیکن عوامی رد عمل کے خوف سے ایسا نہیں کر سکی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی جیلوں میں 30,000 سے زیادہ سیاسی قیدی موجود ہیں اور ان میں سے بیشتر کے خلاف کوئی فرد جرم بھی عائد نہیں کی گئی ہے۔ آل سعود حکومت ڈالر اور ہمسایہ ملکوں کے اندرونی مسائل میں مداخلت کی پالیسی کے دائرے میں تمام کوششوں کے باوجود سعودی عرب میں حکومت کے خلاف ہونے والے احتجاج کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ سعودی عرب کا سیاسی نظام جو بادشاہت کی صورت میں قبیلے کے دائرے میں چلایا جاتا ہے، سماجی، اقتصادی، مذہبی اور سیاسی سمیت مختلف پہلوؤں میں آل سعود کے غلط پالیسیوں کے سبب اس ملک میں عوامی احتجاج کی راہ ہموار کرنے کا باعث بنا ہے۔ سعودی عرب کا سیاسی نظام امتیازی رویے اور فرقہ پرستی کی ماہیت کے باعث سعودی شہریوں، خاص طور پر مشرقی علاقوں کے شہریوں تک اپنی قدروں کو منتقل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ یہی مسئلہ سعودی معاشرے اور سیاسی ڈھانچے کے مابین اختلاف کا باعث بنا ہے اور اس نے سعودی عرب میں اقتدار اور ماہیت کے حوالے سے بحران پیدا کر دیا ہے، جس کا واضح نمونہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں، خاص طور پر مشرقی علاقوں میں حکومت مخالف مظاہرے ہیں۔ احتجاج کو 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود سعودی حکومت نہ صرف حکومت مخالف مظاہروں میں کمی لانے میں کامیاب نہیں ہو سکی، بلکہ سعودی عوام اور آل سعود کے مابین ماہیتی تضاد میں شدت عوام اور حکومت کے مابین تنازع میں مزید اضافے کا باعث بنی ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ 2 برسوں سے جاری ایک اور بحران آل سعود خاندان میں جاری اندرونی اختلافات کے تعلق سے ہے، جہاں شہزادوں کی ہونے والی اموات سے اقتدار کی جنگ اب شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ایک طرف اقتدار کی رسہ کشی اور دوسری طرف اقتدار میں آنے والے شہزادوں کی نفسیاتی صورتحال نے اقتدار کی جنگ کو اور تیز کر دیا ہے۔ بنابراین سعودی عرب میں حکمراں آل سعود خاندان کو جہاں ایک طرف عوام کے جمہوری مطالبات کا سامنا ہے، وہیں خاندان کے اندر شہزادوں کے درمیان جاری اقتدار کی رسہ کشی ان کے لیے اور بھی بڑی مشکل ہے۔
ناظرین، سعودی عرب میں جاری تحریک کے حوالے سے ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار اظہر آبدی صاحب موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں۔ آبدی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جناب، سعودی عرب میں جاری عوامی تحریک کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
جو آپ نے ابھی اپنے ابتدائیے میں بھی بتایا ہے کہ سعودی عرب میں جو تحریک جاری ہے وہ یقیناً مختلف نہیں ہے جو مڈل ایسٹ میں، شرق اوسط میں، دیگر ممالک میں جاری ہے، مصر میں ہوئی، تیونس میں ہوئی، بحرین میں جاری ہے، اور اس کے علاوہ مختلف جو ممالک ہیں جہاں پر یہ عامر بادشاہ جو ہیں یہ اب دسیوں سال سے حکمران ہیں، یا بادشاہت ہے یا عامریت ہے، اور جو بنیادی مسائل ایک بادشاہت کی جو رول ہوتا ہے اس میں، اور جو آمریت کا رول ہوتا ہے اس رول میں، جو بنیادی مسائل اور مشکلات عوام کے لیے ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام سعودی عرب میں موجود ہیں۔ ان ایمپلائمنٹ آپ دیکھیں بہت زیادہ ہے۔ سعودی عرب جو کہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں سمجھا جاتا ہے، آئل کی دولت سے مالا مال ہے، وہاں پر 60% لوگوں کے پاس گھر کی سہولت میسر نہیں ہے، 40% کے پاس تو سرے سے گھر ہی نہیں ہے، और बाकी 20 फ़ीसद ऐसे हैं कि जो बहुत जो मामूली फैसिलिटी है उसमें रह रहे हैं, कि जो किसी इंसान की ज़रूरत पूरी नहीं करता। तो इसलिए 60% लोग ऐसे हैं कि जिनके पास घर नहीं है। ऐसे तमाम मामलात के जो ऐसे हुक्मरानों के इक्तदार के दौरान पेश आते हैं कि जिनको आवाम से कोई गर्ज नहीं होती, वो एक रूलिंग क्लास होती है, और सऊदी अरब में तो उससे भी बढ़ के एक रूलिंग फैमिली है। और सारे जो सऊदी अरब के वसाइल हैं, तेल की दौलत है, सोने के ज़खायर हैं, और इसी तरह मादनियात हैं, वो एक फैमिली के लिए मुख्तस हो गई हैं। तो इस सिलसिले में जो भी मुश्किलात होती हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और एक सऊदी अरब के अंदर के एक दानिश्वर का मैं बयान पढ़ रहा था कि एक इनकलाब की राहें हमवार करने के लिए जो भी फैक्टर्स हैं वो सऊदी अरब में मौजूद हैं। लिहाजा अवामी रूल नहीं है, अवाम की से नहीं है, जो मुमलिकत के मामलात हैं उनमें अवाम की ख्वाहिशात को मद्देनज़र नहीं रखा जा सकता, दौलत की मुनसिफाना तकसीम नहीं है, बल्कि शायद ऐसे अल्फाज ही हम ना कह पाएँ कि जो वहाँ की सही सिचुएशन को रिफ्लेक्ट या डिपिक्ट करते हों कि किस कदर दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम है, और किस तरह एक फैमिली ख़ास तौर पर, और फिर एक रूलिंग क्लास जो है उसके लिए तमाम वसाइल जो हैं वो मुख्तस कर दिए गए हैं। तो ये तमाम मामलात वहाँ पर मौजूद हैं, और इसीलिए वहाँ पर ये अपराइजिंग है। और अभी जैसे आपने जिक्र किया और अभी तजिए में ये आएगा कि वहाँ का के जो मशरक़ी इलाके हैं जिनमें शिया अक्सरियत में हैं, लेकिन ये मुजाहरे वहाँ तक महदूद नहीं है, क्योंकि जाहिर है ये मसाइल जो अनएम्प्लॉयमेंट के हैं, जो गुर्बत के हैं, जो आमरीत के हवाले से हैं, वो पूरे सऊदी अरब में हैं। तो ये तहरीक जो वहाँ पर इस वक्त शुरू है, ख़ास तौर पर आज से 2 साल हो गए हैं, पहला मुजाहरा हुआ गालिबा फरवरी 2011 में हुआ था, तो ये तहरीक पूरे सऊदी अरब की है। अब इसमें जो एक ख़तरनाक पहलू या गैर इंसानी पहलू जो सामने आता है कि अब जाहिर है कि वो इन मामलात को ठीक तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी फैमिली की हुकूमत से दस्तबरदार तो होंगे नहीं, तो वो कुछ ऐसे इकदाम करते हैं कि जो सिर्फ़ एक दिखावे के तौर पे हों। जैसे आज से 1 साल कबल वहाँ पर शाह अब्दुल्ला ने गालबन 27 बिलियन डॉलर का एक पैकेज जो है वो अवाम के लिए मंजूर किया था। अब उनमें से कितना वाकई अवाम पे खर्च हुआ, क्योंकि वहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस तो है नहीं, तो वो भी नहीं देखा जा सकता। तो एक तो ये कि वो कुछ कॉस्मेटिक्स किस्म के इकदाम कर रहे हैं, और दूसरा जो वो मैं ये कहूँगा वाकई इंसानी ज्यादती के ज़ुमरे में ये आता है कि वहाँ पर खुद फ़िरका वारियत फैला रहे हैं। और वहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने आपने शेख नम्र की बात की, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले कोई उन्होंने 10 से 15 के दरमियान शिया नौजवान पकड़े हैं, और ये कहा गया है कि ये एक स्पाई नेटवर्क का हिस्सा हैं। अब वो नेटवर्क दिखाया नहीं गया, ना उस नेटवर्क के कोई सबूत फराहम किए गए हैं, बस ये कहा है कि ये एक कोई एक साजिश कर रहे थे, या साजिशी जो प्लान है उसका हिस्सा है, जिसपे वहाँ बड़ा शदीद रद्द अमल आया। तो अगर खुद गवर्नमेंट अपने इलाकों में या अपनी आबादी में डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दे तो आप उससे सोच सकते हैं। और वहाँ पर पहले 20 और अब कोई 100 के करीब जो शिया उलमा हैं और शिया दानिश्वर हैं वो इकट्ठे हुए हैं, और उन्होंने सख्ती से रिजेक्ट किया इसको कि इन नौजवानों को जो है वो छोड़ा जाए, इन पर कोई ब्लेम नहीं है, और ये खालिसतन बदनीयत पर मबनी है सऊदी अरब की गवर्नमेंट का बयान। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, गुर्बत, डिस्क्रिमिनेशन, अब वहाँ पर जो तकरीबन 30 मिलियन आबादी है सऊदी अरब की, उसमें जो मिनिमम अंदाज़ा लगाया गया कि 15% शिया हैं, और मशरकी
जी
इलाके में जहाँ सऊदी अरब का 90% ऑयल है वो शिया कंसंट्रेशन का इलाका है, और जो माइनॉरिटीज़ के बारे में ऐसे आदाद शुमार होते हैं वो हमेशा कम तरफ उसकी जो वो अंदाज़े लगाए जाते हैं, यकीनन 15% से ज़्यादा शिया वहाँ पर मौजूद हैं। तो वहाँ पर एक शियत के खिलाफ भी, यानी फ़िरका वाराना हवाले से भी ये मुहिम शुरू उन्होंने कर रखी है। तो
जी
मैं
जी
ये समझता हूँ कि ये तहरीक जो सऊदी अरब में चली है ये जिस तरह बाकी इलाकों में नहीं रुकने पा रही, और कई ममालिक में हुकूमतें जो हैं वो तब्दील हो चुकी हैं, कई में
जी
तब्दील इस तरह से हुई हैं कि वो इंकलाब मुकम्मल नहीं हुआ। ऐसी हुकूमतें नहीं हैं जो अवाम के जज्बात की सही अक्कासी करती हों, तो वहाँ वो तहरीक जारी है। तो सऊदी अरब में भी ये तहरीक जारी रहेगी
जारी
और ये
रहेगी
रुकेगी नहीं। और इसमें दो फैक्टर्स बड़े अहम रहेंगे। एक फैक्टर तो पूरे सऊदी अरब के हवाले से है, जो मैंने जिक्र किया कि वहाँ पर गुर्बत के
जी
मसाइल हैं,
जी
अनएम्प्लॉयमेंट के मसाइल हैं, और दूसरा ये कि जो डिस्क्रिमिनेशन शुरू की है शिया कम्युनिटी के खिलाफ वहाँ पर, जो कि मैंने अर्ज किया कि 90% ऑयल वाले इलाके में है, और ये अंदाजे लगाए गए हैं कि गालिबन ये उनको एहसास नहीं है, या वो अपनी जो फैमिली है, अपने जो खानदान है आले सऊद, उसकी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए आखिर तक जाने के लिए तैयार हैं। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि अगर सऊदी अरब का वो जो 90% इलाका जो शिया आबादी का इलाका है, जहाँ अवाम जो हैं उन्होंने अगर ये फैसला कर लिया कि ये तो हमें जो है दीवार से धकेल रहे हैं, तो ये पूरी दुनिया की जो ऑयल सप्लाई है वो चोक हो सकती है। तो
जी
ये
जी
बड़े ख़तरनाक हालात हैं जो खुद हुकूमत वहाँ पैदा कर रही है, और ये बड़ा ज़रूरी है कि सऊदी अरब में जो अवामी जज्बात की अक्कासी करती हो और अवामी हुकूमत है वो आए, तभी वहाँ के मामलात जो हैं वो ठीक हो पाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आपजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, जहाँ हिंदुस्तान के सीनियर तजिया निगार कमर आगा साहब मौजूद हैं। कमर आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। कमर आगा साहब, सऊदी अरब में 2011 के अवायल से ही अवामी तहरीक शुरू हुई, तमाम तर सख्तियों के बावजूद ये तहरीक आज भी जारी है, और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब आले सऊद के खिलाफ मुजाहरे ना होते हों। सऊदी अरब का जो सिस्टम है, वहां पर जो सिक्योरिटी की सख्ती है, सऊदी अरब में अवामी तहरीक के दवाम के अवामिल क्या हैं? जी दिल्ली से राबता बर जी मुनकता हो गया है। जी अब्दी साहब, यही सवाल मेरा आपसे है, सऊदी अरब में अवामी तहरीक के दवाम के अवामिल क्या हैं?
जी, ये मैं अर्ज कर चुका हूं कि आमरियत में जितने मुश्किलात पैदा होते हैं, क्योंकि जो एक आमिर या बादशाह होता है उसकी ओरिएंटेशन अपना खानदान या अपनी जात होती है, और वो फिर सोचता रहता है कि किस, क्योंकि उसकी आवाम में स्टैंडिंग तो होती नहीं है, आवाम में मकबूलियत भी नहीं होती, तो उनकी जो पहली तरजीह होती है वो ये होती है कि ऐसे मूव्स की जाएं, ऐसे इकदामात किए जाएं जिससे उसकी अपनी हुकूमत, उस आमिर की, उस बादशाह की और उसके खानदान की हुकूमत बरकरार रहे। तो जब वो इस तरह के इकदाम करते हैं तो ज़ाहिर है आवाम के लिए मुश्किलात पेश आती हैं, आवाम को, आवाम की भलाई के, रफाए आमा के काम नहीं हो सकते, आवाम की अपलिफ्ट के काम नहीं हो सकते, गुर्बत दूर करने के काम नहीं हो सकते, एम्प्लॉयमेंट को जारी रखने जो है ये एक मुसलसल अमल होता है, यानी एम्प्लॉयमेंट्स नई नई पैदा करना, ये हर हुकूमत के फ़राइज़ में भी है, उनकी तरजीह भी होनी चाहिए, और हुकूमत चलती भी और मुआशरा तरक्की भी तभी करता है जब एम्प्लॉयमेंट के मौके में असर आते रहे। जो आमिर होता है या जो बादशाह होता है वो इन मसाइल पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे पाता, अपने जो उसके अपने मकासिद होते हैं, तो वो सारे अवामिल मौजूद हैं इस वक्त सऊदी अरब में, जैसे मैंने अर्ज किया। अब सिलसिला ये है कि कितनी देर ये जो रॉयल फैमिली है ये अवामी जज्बात को दबा सकती है, तो उसके लिए फिर ये होता है कि ये चेन रिएक्शन मैं समझता हूं शुरू हो जाता है, कि जब वो आमिर और बादशाह ये देखता है कि लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो फिर वो फैक्टर्स देखता है कि जिसमें लोगों को तकसीम किया जा सके। सऊदी अरब में एक फैक्टर बना बनाया मौजूद है, और वो ये है कि वहाँ पर एक तरफ शिया आबादी है, दूसरी तरफ एक सुन्नी आबादी है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था एक गैर जानिबदार जरिए की, जिसमें ये बताया गया कि सऊदी अरब की हुकूमत इंटेंशनली, यानी सोचे समझे मंसूबे के तहत, और ये बड़ा जुल्म है कि हुक्मरान ऐसा करें, शिया और सुन्नियों के दरमियान गलतफहमियां फैलाती है, और जो शियों के हवाले से सुन्नियों में, सुन्नियों के हवाले से शियों में ऐसी बातें फैलाती है कि जिस तरह जिससे दोनों एक दूसरे के खिलाफ नफरत जो है वो पैदा हो उनमें, तो वो फिर इस तरह के इकदाम करने लगते हैं ये हुक्मरान कि अवाम तकसीम हो जाए। लेकिन उसकी भी एक हद होती है, जब जाहिर है कि ज़राए रसरो रसाइल या कम्युनिकेशन या मीडिया अब तरक्की कर रहा है और इंटरनेट के जरिए और दीगर जरिए इत्तलात पहुंचती हैं, तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है लोगों में, यानी एक हद तक तो ऐसे हथकंडे कामयाब हो सकते हैं, लेकिन जब वो हद पार हो जाए तो ये उल्टा फिर रिएक्शन पैदा करते हैं। तो दवाम के ये सारे मैंने जैसे बताया फैक्टर्स मौजूद हैं, अवाम की फलाह बहबूद के काम वहाँ नहीं हो पा रहे, हुकूमत को जो आबादी है सऊदी अरब की उसको तकसीम करने के जो तरीके हैं वो अपना रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब हम देखेंगे कि अवाम को वहाँ की ज़्यादा जो शऊर होगा और जब ये तहरीकें चलती हैं तो इन तहरीकों के चलने की वजह से भी कम्युनिकेशन के ज़राए मजबूत हो जाते हैं, एक दूसरे से रवाबित मजबूत हो जाते हैं। तो ये मेरा ये ख्याल है कि ये तहरीक जो है ये क्योंकि वो फैक्टर्स मौजूद रहेंगे तो ये तहरीक जो है ये मजबूत होगी और ये मुजाहरे जो सऊदी अरब में पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि मुजाहरे हो सकते हैं वो मुजाहरे होने लगे हैं।
जी
एक बात,
शुक्रिया।
दूसरी बात ये कि ये मुजाहरे अब तसलसल के साथ हो रहे हैं, और तीसरी बात ये कि ये मुजाहरे किसी एक जगह पे नहीं हो रहे, कतीफ में हो रहे हैं, शिया डोमिनेटेड दूसरे जो इलाके हैं उनमें हो रहे हैं, दमाम के बारे में भी सुना वहाँ हो रहे हैं, इसके साथ साथ रियाज में हो रहे हैं, मदीना में हो रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है ये इसी तरह जारी रहेगा जैसे कि हम दुनिया के बाकी तहरीकों में देखते हैं कि जब एक तहरीक शुरू होती है और वो आगे बढ़ती है तो नॉर्मली ऐसा होता है, आम तौर पे हमने ऐसा देखा कि वो तहरीक मजबूत से मजबूतर होती है। हमने मिस्र में देखा, हमने ट्यूनिस में देखा, हमने इनकलाब ईरान खुद इसकी एक जर्री मिसाल है। अगर हम बहुत पीछे इनकलाब चीन या इनकलाब फ्रांस की तरफ ना भी जाएं तो दौरे हाजिर में इनकलाब ईरान इसकी एक बहुत बड़ी सुनहरी मिसाल मैं कहूँगा। तो ये दवाम तो इसे रहेगा और मैं नहीं समझ सकता कि सऊदी हुक्मरान जो हैं ये कब तक इन मुजाहरों को इन अवामी जज्बात को रोक पाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और नाज़रीन, टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमारा राबता बरकरार हुआ है पाकिस्तान के एक और सीनियर तजिया निगार डॉक्टर कैसर खान साहब से। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसर खान साहब
जी,
जनाब सऊदी अरब में तहरीक शिया आबादी के इलाकों से शुरू हुई लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका दायरा वसीतर होता गया और अब सऊदी अरब के अक्सर इलाके हत्ता रियाज और जद्दा भी इससे मुतासिर हो चुके हैं, इसकी लपेट में आ चुके हैं। लेकिन आले सऊद अब भी अवाम के मुतालिबात पर तवज्जो देने के बजाय उनकी सरकूबी को ही तरजीह दे रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दुनिया की जो सूरत हाल है, जहां पर भी कोई भी इनकलाब आया या जो भी तहरीक चली, नतज उसके जो भी निकले उसके पीछे कोई ना कोई अहम वजह होती है, या कोई मुआशी मसला होता है, या कोई ऐसी वहां पर कम्युनिटी होती है जिसकी हकूक पामाल किए जा रहे होते हैं। अभी सऊदी अरेबिया में ये जो अभी जो काम ये शुरू हुआ है ये आज कल शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसकी जो तारीख है बहुत पुरानी है और इसमें वक्तन फौक्तन मखसूस इलाकों में जो शिया इलाका थे वो उसमें तो ये तहरीक चल ही रही थी। लेकिन चूंकि जैसे उधर से इनके मजालम बढ़ते गए, इनको अपने आवाज़ को नहीं उठने दिया गया, इनकी आवाज़ को दबाया गया, यहाँ उलमा जो है शहीद किए गए, जेलों में डाले गए, नौजवान जो है वो यहाँ पर शहीद हुए, तो उस सूरत में यही नतीजा एक ये हतमी नतीजा था, इसी तरह होना था। और ये जो है हम तारीख में देखते चले आ रहे हैं, ये इसी तरह ही होता है कि जब जुल्म ज्यादा हो जाता है तो उसके जो अपने असरात जो माशरे के ऊपर आते हैं वो बाज़ का हुकूमतों को ले डूबते हैं। और जो अभी इस वक्त सऊदी अरेबिया में जो कुछ हो रहा है और इसमें चूंकि ये मुजाहरे जो हैं ये शिया इलाकों से निकलकर अब जो है मदीना और मक्का रियाद इन इलाकों में सुनने में आए हैं, यहाँ पर हो रहे हैं, और ये जो जो भी मुजाहरे हो रहे हैं इसमें पहले तो एक शिया लोग ही शामिल हुआ करते थे, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं जो सुनने में बात आई है वो ये है कि शिया के अलावा बाकी लोग, अगरचे मैं कह सकता हूँ कि उनके मकासद कुछ और हो सकते हैं, जैसे कि इनके शहनशाहियत के खिलाफ एक खास ग्रुप जो है वो भी काम कर रहा है, अगरचे इस तरफ ऐसी बात नहीं, इस तरफ अपने हकूक की बात है और उस तरफ उनके अपने मसाइल हैं क्योंकि इनके खानदानी भी मसाइल हैं, अब वो लोग जो हैं वो भी इन मजारों में शामिल हो रहे हैं। अब इसका जो हतमी नतीजा जो आखिरी नतीजा नजर आ रहा है वो यही होगा कि जो बाकी ममालिक में हमने देखा है, जैसे मिस्र में देखा, जैसे लीबिया में देखा, और ये इसका नतीजा इसी किस्म का निकलता नजर आ रहा है, क्योंकि ये कब तक लड़ सकेंगे, क्योंकि जब अवाम खड़ी हो जाए, अवाम निकलना शुरू हो जाए, अवाम रोड पर आ जाए और वो लोग अपना सब कुछ उठा के रोड पर रख दें और मरने के लिए तैयार हो जाएं, तो उसके बाद कोई भी हुकूमत उनकी आवाज को दबा नहीं सकती। ये एक ऐसा एक फितरी अमल होता है और इसका एक फितरी नतीजा जो निकलता है वो यही निकलता है जो मिस्र में या लीबिया में या बाकी जगहों के ऊपर निकला। जैसे आपने देखा कि बहरेन में एक दफा तो तहरीक को दबाया गया, लेकिन उसके दबाने के क्या असरात हुए, दोबारा वही तहरीक फिर शुरू हो गई और उसी अंदाज में शुरू हुई, उसी शिद्दत के साथ शुरू हुई जो कि अभी आजकल चल रही है। तो ये जो मजारे जैसे आपने मतलब बात की है कि ये मुख्तलिफ इलाकों में फैल रहे हैं, ये मैं समझता हूँ अभी और फैलेंगे, इनमें शिद्दत आएगी और इसका हतमी नतीजा वही होगा जो हमें नजर आ रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया कैसर खान साहब, लाइन पर रहिएगा। और नाज़रीन दिल्ली स्टूडियो से हमारा राबिता बरकरार हो गया है, जहां हिंदुस्तान के सीनियर तजिया निगार कमर आगा साहब मौजूद हैं। कमर आगा साहब, जनाब सऊदी अरब में अवाम की इनकलाबी तहरीक जारी है, आपके ख्याल में इस तहरीक की माहियत क्या है?
देखिए बहुत सी बातें हैं
जी,
ज्यादातर बातें पहले हमसे पहले आबदी साहब ने और कैसर साहब ने उस पर जिक्र किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा
जी।
मैं महज इतना कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो तहरीक है वहां पे वो अकेली सऊदी अरबिया में नहीं है, बल्कि ये इस्लामिक बेदारी जो है बहुत से अरब देशों में, ज्यादातर अरब देशों में आई है
जी, जी।
और ये बेदारी जो है वो लोग चाहते हैं कि ये जो हुकूमतें हैं, खासतौर से वो हुकूमतें जो फेल हो गई हैं और जो अब कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही, जैसे कि सऊदी अरबिया या दूसरे जगहों पे हैं, उनके खिलाफ ये तहरीक हुई है। वहाँ का जो यूथ है वो चाहता है, वहाँ के नौजवान ये चाहते हैं कि वो उनसे अच्छी हुकूमत चला सकते हैं, उनका मानना ये है कि वो ज़्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हैं और वहाँ पे वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप करना लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिसमें पूरे मुल्क का इन्वॉल्वमेंट हो, न कि एक फैमिली या कुछ चंद लोगों पूरे मुल्क को चलाएं। तो ये सोच के उन लोगों ने ये तहरीक शुरू की है, हुई तो शुरू तूनीसिया और इजिप्ट से थी, लेकिन अब ये पूरे अरब वर्ल्ड में फैल गई है। सऊदी अरबिया भी उससे दो चार है, उससे बच नहीं सकता। सऊदी अरबिया में मेरा ख्याल है जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं वो सब वहाँ पे मौजूद हैं, उसकी वजह से शुरू हुई। अब उनकी और उनका जो सऊदी अरबिया है उसकी जो रिजीम है, हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ये वीक डिपेंडेंट स्टेट, इसको हम लोग कहते हैं कि ये खुद अकेले इसकी पावर नहीं है, ये बल्कि जब ये इसको जो सपोर्ट है वो बड़े देशों की, खासतौर से पश्चिमी देश जिसको हम लोग कहते हैं यानी मगरबी देश, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप की सपोर्ट से ये वहाँ पर ये रिजीम चल रही है। तो इन दोनों का ज़ाती इस वक्त जो मसला है, अमेरिका भी ये चाहेगा और ख़ासतौर से वहाँ की रिजीम भी ये चाहती है कि आपस में इख्तलाफात होना बहुत ज़रूरी है और वो इख्तलाफात होगा तभी ये ताकत इनको मिलेगी, तभी ये हुकूमत में रह सकेंगे। उसी के चलते हुए जैसा कि अब्दी साहब ने पहले बताया और कैसे साहब भी जिक्र कर रहे थे, तो वो उसको पूरा कोशिश करते हैं शिया सुन्नी हो जाए या ट्राइबल ट्राइब्स को आपस में लड़ाने की, सुन्नियों को सुन्नियों से लड़ाने की, शियों के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स खड़ा कर देना, ये पुराना इनका तरीका है। हिंदुस्तान में हम लोग तो बहुत पहले से इसको जानते हैं, इसलिए कि अंग्रेज़ों ने यहाँ सब बहुत पहले इसका एक्सपेरिमेंट, 100 साल से भी ज़्यादा हो गए जब इसका एक्सपेरिमेंट किया था, ये उसी तरह उसको वही इनके पास चाले हैं, उसी तरीके से इनको कर रहे हैं। सऊदी अरबिया एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, खासतौर से मगरबी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें क्योंकि तेल और दूसरे जखीरे पाए जाते हैं जो अमेरिकन इकनॉमी, यूरोपियन इकनॉमी जो इस वक्त क्राइसिस में है, उसके लिए वहाँ पे उनका कब्जा होना बहुत ज़रूरी है और वो यहाँ से सस्ता तेल और दूसरे जखीरे निकालते हैं, मिनरल्स यहाँ से ले जाते हैं बहुत सस्ते दाम पर। और उसके बदले में देखिए एक और तलब बात यह है, इनकी सऊदी अरबिया की या पूरी दूसरे जो पर्शियन गल्फ है उसके अंदर के जितने भी देश हैं, ज़्यादातर जो देश हैं, उनकी इकनॉमी बिल्कुल वेस्टर्न यूरोपियन नेशन से, अमेरिका से जुड़ी हुई है। वो जितना भी पैसा तेल के जरिए कमाते हैं वो सब वापस अमेरिका या यूरोपियन बैंक्स में चला जाता है। इनके पास क्रेडिबल बैंक भी नहीं है, ये वहीं इन्वेस्ट करते हैं, सरप्लस भी वहीं से खरीदते हैं, वेपन्स भी वहीं से खरीदते हैं, और सारी कमोडिटीज़ इनकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो भी वहीं से आती हैं और बहुत महंगे दाम पे आते हैं। ये बड़े बड़े वेपन और इस तरह के असलहे खरीदते हैं जिनका ये खुद इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनका इस्तेमाल भी वही देश के लोग करते हैं। उसी के उन्हीं असलहों से इराक की दो जंगें लड़ी गई, इन्हीं एयरपोर्ट और उनको यूज़ किया गया, तो ये बिल्कुल इसका सारा फायदा जो होता है वो उनको होता है। और सरप्लस मनी जो होती है करप्शन से जो पैसा कमाते हैं वो भी इन्हीं देशों में इन्हीं बैंकों में बाहर के रखते हैं। तो इन दोनों का जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो ये है कि किसी भी सूरत से आपस में डिवीजन कराओ जितना हो सके। अभी तो शिया सुन्नी की आप बात सुन रहे हैं, कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा ट्राइबल डिफरेंसेस, जैसे हमने यमन में देखा जिस तरीके से किया गया, और ये उसी तरह की साजिश का एक शिकार होता चला जा रहा है। वक्त आ चुका है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अब यह है कि इस तरह की हुकूमत बर्दाश्त नहीं है लोगों को, जिसके अंदर के सिर्फ चंद लोगों का राज हो और बाकी सब उनके मुल्क में लोग गुलाम की तरह से रहें, यह गुलामी लोगों को पसंद नहीं है, इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। मैं भी समझता हूँ, मेरा भी ये मानना है कि इसको सप्रेस नहीं किया जा सकता किसी भी शक्ल में, लेकिन यह है कि ये लोग बहुत पावरफुल हैं, इनको इतना कमज़ोर भी नहीं समझना चाहिए क्योंकि इनके लिंकेजेस हैं बाहर दूसरे मुल्कों से। फिर उसके अलावा इनका एक क्लास है जो ये सारी रिजीमें, जैसे शाह ऑफ ईरान थे उसी तरह के ये भी हैं, इनके पास भी उसी तरह से आर्मी बैक्ड रिजीम है, आर्मी है, और फिर उस आर्मी के पीछे अमेरिकन आर्मी है और वेस्टर्न नेशंस हैं, तो इनसे लड़ना भी इतना आसान नहीं होगा। और मगर यह है कि ये एक लड़ाई जो शुरू हुई है, मुझे नहीं लगता कि ये रुक पाएगी, ये बहुत लंबी लड़ाई है और अभी शुरू हुई है। फैमिली के अंदर भी इनके यहाँ एक चीज़ गौरतलब यह है कि इनकी फैमिली के अंदर भी काफ़ी डिस्प्यूट हो गए हैं और वो भी एक सामने नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब पावर जो है सेंटर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। ये जो यंग लड़के हैं, यंग प्रिंसेस हैं जो कि कई हज़ार की तादाद में हैं, यानी सेकेंड जनरेशन में जाएगी, उसमें की वजह से भी बहुत से अख्तिलाफात हैं। फिर दूसरी तरफ ये भी एक प्रॉब्लम है कि पश्चिमी देशों में, खासतौर से मगरिब के जो देश हैं, उसके अंदर भी इकोनॉमिक क्राइसिस है, वहाँ पर भी हालात अच्छे नहीं, इकोनॉमिकली भी बहुत क्राइसिस में आते चले जा रहे हैं। उनको जिस तरीके से पहले सपोर्ट मिलती थी, क्या अमेरिका उस तरह की सपोर्ट दे पाएगा, इतनी बड़ी फौज मेंटेन कर पाएगा? तो ये बहुत सी सब चीज़ें हैं इसके, मैं समझता हूँ इसकी इस नज़र में देखना चाहिए कि जिस तरीके से वहाँ पे शिया सुन्नी टेंशन जो बढ़ाया जा रहा है या आने वाले के, उनके यहाँ तो सिर्फ एक ही आइडियालॉजी है जो वहाबी सल्फी आइडियालॉजी है, हर आदमी को उसी आइडियालॉजी पे मानना पड़ता है। उनके यहाँ आपस में भी जो 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 गैर शिया हैं उनके आपस में भी बहुत टेंशनस हैं, उसकी वजह ये है कि वो लोग अपना जो दूसरे आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं जो ज़्यादातर अक्सरियत में है, इसलिए वहाँ भी सल्फी आइडियोलॉजी के मानने वाला पूरा मुल्क नहीं है, वहाँ पे बहुत छोटे से लोग हैं जो आले सऊद से जुड़े हुए हैं, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं या आर्मी से जुड़े हुए हैं, वो लोग तो ज़रूर हैं जिनको फ़ायदा सीधा मिल रहा है। आम जनता वहाँ की नहीं है इस आइडियोलॉजी को मानती, और वो उनके ऊपर उस आइडियोलॉजी को न मानने की वजह से वो बिल्कुल कट गए हैं। उनके ऊपर दो तरफ से रिप्रेशन हो रहा है, एक तरफ तो उनके ऊपर हुकूमत की सख्तियां हैं और दूसरी तरफ वहाँ का जो रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट है, यानी जो मजहबी और सियासी जमातें हैं, उनके भी दबाव उनके ऊपर बढ़ना रहता है, बहुत प्रेशर में रहते हैं वो लोग। तो वो सामने खुल के निकल रहा है और सामने वो बाहर आ रहा है, इसको मैं नहीं समझता कि ये दबा पाएंगे। और ये एक बेदारी है, ये लोग सब मुसलमान हैं, मजहब के मानने वाले हैं, जो जो इनके खिलाफ भी हैं, जो लड़ रहे हैं, चाहे वो शिया हों या सुन्नी हों, और वो चाहते भी हैं कि एक यूनिटी हो, और ये इनकी कोशिश ये है, सरकार की कोशिश ये है किसी भी सूरत से वहाँ पे फिरका वारान फैल जाए, आपस में ये सब डिवाइड हो जाए। मैं समझता हूँ ये बहुत दिन नहीं चल पाएगी।
जी कमर आगा साहब, आले सऊद ने 8 महीने कबल जुलाई के महीने में सऊदी अरब के मारूफ शिया आलिम दीन आयतुल्लाह शेख बाकिर निम्र को पहले गोली मार के जख्मी किया और फिर उन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही बहुत ही शदीद मुजाहरे हुए थे, मुजाहरों में काफ़ी शिद्दत आ गई थी मशरकी इलाकों में, और अब उन पर एक नुमाइशी अदालत में मुकदमे का आगाज किया गया है और सरकारी वकील ने उनके लिए सजाए मौत का मुतालबा किया है। इसके बारे में आपका तजिया क्या है?
मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। वो एक बड़े आलिम दीन थे, उनकी कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं थी, वो बल्कि ये भी चाहते थे कि सब मिल के रहे, और उनकी बड़ी कोशिश थी, और वो चाहते थे कि जो वहाँ के, गौरतलब बात यह है कि जो ये पूरा इलाका है जहाँ पे शिया कंसंट्रेशन है, ख़ास तौर से चाहे वो कतीफ़ हो या अलहसा का रीजन हो या दूसरे जितने भी ईस्टर्न प्रोविंसेस के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पे तेल के बड़े कुएं पाए जाते हैं, ये सारे इलाके में ये बहुत अंडर डेवलप ये एरिया है। इसमें बिल्कुल डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ है, जहाँ पे ऊपर ना तो ढंग से स्कूल हैं, ना कॉलेजेस खुले हैं, ना यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे बहुत ख़राब है, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लड़कों में यूथ को नौकरियाँ नहीं मिल रही, सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। वो बेसिकली बाकर आयतुल्ला बाकर निम्र साहब चाहते थे कि वो ये एरिया भी डेवलप हो, यहाँ पे भी तरक्की हो, और उनकी वो कोशिशें थीं उसको लेके, ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मैं तो कहूँगा थे बहुत बड़े, जो चाहते थे कि डेवलप हो वो पूरा रीजन। वहाँ पे 300 स्कूल हैं और उन 300 स्कूल में एक भी प्रिंसिपल शिया नहीं है। फिर उसके बाद जो वहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उनके हालात हैं वहाँ पे, वो इतने ख़राब हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं, ढंग के टीचर्स नहीं हैं, किसी भी इन लोगों को किसी भी बहुत सी जो इम्पोर्टेंट जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें जॉब नहीं मिलती। फिर उसके बाद जो उनका मिलिट्री या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर इन लोगों को, इन लड़कों को जॉब्स नहीं दी जाती, जुडिशरी में भी शियों की का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इस तरीके से इतना ज़्यादा रिप्रेशन है इन लोगों के ऊपर जिसकी कोई इंतहा नहीं, और इसी वजह से उनको उन्हीं ने उसके खिलाफ बाकर निम्र सामने आवाज़ उठाई थी तो उनको गोली मार दी गई, बजाय उनसे बातचीत करके मसलों को हल करने के लिए उनको गोली मारी गई और जेल भी। मैं समझता हूँ इस सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होने का, ये हमने बहुत से देशों में देखा है, इस तरीके से गोली मारना या रिप्रेशन करना, ये ज़माना बदल चुका है। अब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, ब्रेकिंग न्यूज़ हर वक्त आदमी देख रहा है, पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है यूथ, और उसमें ये सोच रहे हैं कि ये इस तरीके से इतनी बड़ी तहरीक को दबा के निकल जाएंगे, तो वो मैं नहीं समझता कि वो मुमकिन होगा, और बल्कि इस सब हरकतों से और मसला बढ़ जाते हैं और मुसीबत बढ़ जाती है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आब्दी साहब, आप क्या कहते हैं, आयतुल्ला शेख बाकिर निम्र जैसी हस्तियों को जेल में बंद करने, उन पर मुकदमा चलाने, उन्हें गोली मारने और उन्हें सजाए मौत की धमकी देने, और क्या सजा, और सजाए मौत देने से क्या सऊदी हुकूमत अपने आप को मिस्र, लीबिया और ट्यूनिस के आमिरों जैसे अंजाम से बचा सकेगी?
जी हाँ, सबसे पहले तो ऐसे जो इकदामात हैं वो इस बात की गमाजी करते हैं कि हालात कहाँ तक पहुँच गए हैं, यानी हालात इस नहज पर पहुँच गए हैं और तहरीक इतनी मजबूत हो गई है कि उसके लीडर्स को, उलमा को गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनको ज़ख्मी किया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है, उनको जेल में फेंका जा रहा है, उन पर नुमाइशी मुकदमात चलाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि उनको सज़ाए मौत देने के दर पे हैं। तो इससे एक तो तज़िया ये होता है कि ये तहरीक कितनी मजबूत है, वरना अगर कमज़ोर सी तहरीक हो, लोगों में उस तहरीक की मकबूलियत ना हो, लोग ज़्यादातर अपने लीडर को ना सुन रहे हों, तो फिर उस लीडर को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती और वो तहरीक खुद ही दम तोड़ जाती है। तो ये जो शेख बाकिर अन्निम्र के साथ जो कुछ हो रहा है, ये सबसे पहले तो इस तहरीक की शिद्दत को, इस तहरीक की अवाम में मकबूलियत को, और इस तहरीक जो ये उठी है उन अवामिल जिसके बिना पर ये उठी है उनकी मजबूती को जाहिर करती है, एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जब ये लोग जो आमिर होते हैं, जो बादशाह होते हैं, जिनकी आवाम में कोई मकबूलियत नहीं होती, जब इनके खिलाफ़ तहरीकें उठती हैं तो जाहिर है कि इनके पास ऐसी बात तो कोई होती नहीं कि आवाम में ये पॉपुलैरिटी गेन करें, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं, कोई ऐसी मनसूबाबंदी नहीं होती। इनके सामने सिर्फ चंद एक ही रास्ते होते हैं जिनमें से एक यह है कि आवाम को तकसीम किया जाए, जैसा कि हमने पहले कहा, हमारे फाजिल तबसरा निगार जो इंडिया से हैं उन्होंने कहा, और दूसरा होता है कि उसके लीडर्स को एलिमिनेट किया जाए या कम से कम पाबंदे सलासिल किया जाए, तो वो ये कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सऊदी गवर्नमेंट को और हुक्मरानों को नवशते दीवार पढ़ना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खाकम बदहन, अगर वो शेख अनम को कोई गजंद पहुंचाते हैं, तो ये देख लें कि जो मज़बूत तहरीकें होती हैं, जो मज़बूत अवामिल पर उस्तवार होती हैं, जो पॉपुलर होती हैं, जिनकी क़यादत अवाम में से उठती है, जो अवाम की उमंगों की तर्जुमान होती हैं, उनको अगर शहीद भी मिलने लगें और ख़ास तौर पर लीडर्स में, तो फिर वो हुक्मरान जो शायद कुछ देर बाद जाते, वो बिल्कुल रेत की दीवार साबित होते हैं और ये हुकूमतें फौरन ख़त्म हो जाया करती हैं। लिहाजा मैं इस सिलसिले में यही कह सकता हूँ कि अगर सऊदी गवर्नमेंट अपने आप को कुछ देर बचाना चाहती है, तो इस किस्म की किसी हरकत पर या गैर दानिशमंदाना बात पर वो अमल करने से बाज रहे, और जो शेख अन्निम्र जो वहाँ के एक पॉपुलर लीडर हैं, आलम दीन हैं, दानिश्वर हैं, अवाम की रगों पर, नब्ज़ों पर उनका हाथ है, उनको किसी किस्म की गजंद ना पहुँचाए। वरना ये तहरीकें जो हैं, ये खून से इनकी आबियारी होती है, और हमने देखा है, अगर आप तारीख़ बशर पढ़ें, कि खून जो है वो हमेशा तलवार पर गालिब आया है। ये ज़्यादा देर ये फिर कायम नहीं रह सकती ऐसी हुकूमतें। तो मैं ये समझता हूँ कि खुद सऊदी गवर्नमेंट पे, जो मेरा ज़ाती तजिया, आप इसको कह लें कि सऊदी गवर्नमेंट पे इतना दबाव होगा कि वो अगर उसमें ज़रा सी भी दानिशमंदी हुई और वहाँ पर जिसको कहते हैं कि सेंस ने प्रिवेल किया, तो वो गजंद नहीं पहुंचाएंगे शेख बाकर को। लेकिन अगर वो कहते हैं कि अगर खुद ही आदमी जो है वो अपनी किस्मत फोड़ने लगे, तो फिर कुदरत भी किसी का साथ नहीं देती। तो अगर उन्होंने ऐसा सोचा, तो ये तहरीक बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, और फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा देर जो है ये सऊदी रॉयल फैमिली जो है वो सऊदी अरब में टिक सके।
बहुत बहुत शुक्रिया आपने साहब, बहुत
शेख
बहुत
अन्निम
शुक्रिया,
लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं,
और बहुत बहुत शुक्रिया अजहर आबदी साहब, कैसर खान साहब और कमर आगा साहब, तीनों हजरात के हम शुक्रगुजार हैं। यकीनन जैसा कि आबदी साहब ने कहा है कि अगर खुदा न खास्ता आयतुल्ला शेख बाकिर नम्र को गजन पहुंचाने की और उन्हें सजाए मौत देने की कोशिश की आले सऊद ने, तो ये इकदाम खुद आले सऊद के लिए बहुत महंगा पड़ेगा, और सऊदी अरब के अवाम ने भी अपने मुजाहरों में इंतबाह दिया है कि अगर शेख बाकिर नम्र की बेहुरमती का सिलसिला जारी रखा गया और उनको सजाए मौत देने की कोशिश की गई, तो फिर आले सऊद अपने अंजाम के बारे में सोच लें। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir, और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।